ओम शांति। आज हम अलबेला और आलस्यपन का बुक पूरा रिवाइज करेंगे और मैं और पवित्र बहन ने आधा आधा किया है। कुछ कुछ पॉइंट्स हम बोलेंगे, कुछ पॉइंट्स आप लोग भी बोलेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने 969 की मुरली रिवाइज की थी, वैसे ही कुछ रिवाइज करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स पहले सुना देते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर पैराग्राफ से हमने पॉइंट्स निकाले हैं कुछ कुछ। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प के खाते को समाप्त करो। तो इसकी विधि क्या है कि बार बार अटेंशन हो। आप अमृत वेला अटेंशन रखते हो, रात में भी अटेंशन रखते हो, परंतु मध्य में कम हो जाता है। तो जब मध्य में कम हो जाता है तो फिर संपूर्ण कैसे बनेंगे। तो बाबा ने यहाँ पर बार बार अटेंशन रखने की बात की। दूसरा, बाबा ने एक मुरली में कहा कि बाबा शब्द जब भी कहो तभी भी कुछ नया अनुभव होना चाहिए हमेशा। तो हर गुण की पॉइंट्स जब भी याद करो या अनुभव में लाओ तो नया अनुभव हो। तो उसमें विधि बताई बाबा ने कि जब हम नवीनता लाते हैं ना तो उमंग उत्साह रहता है, और जब उमंग उत्साह रहता है तो सुस्ती नहीं आती है। तो सुस्ती नहीं है, उमंग उत्साह है, तो अलबेलापन चला जाता है। तो उसमें एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जैसे कि जब पिकनिक करते हैं तो वैरायटी चीज़ें चाहिए होती है ना, कि जैसे कि नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि कभी अमृत वेला आप परमधाम में चले जाओ, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ, कभी आप लंदन के सेंटर चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया के सेंटर चले जाओ, तो सुस्ती दूर हो जाएगी और अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने एक मुरली में कहा कि ये तोतो और गेगे की भाषा को समाप्त करो, ब्राह्मणों की डिक्शनरी से ये तोतो और गेगे की भाषा को निकाल दो। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा कि दूसरों को देखने की वृत्ति को चेंज करो। जब हम दूसरों को देखते हैं तो व्यर्थ आता है, तो दूसरों को देखने की वृत्ति को चेंज करो। और अगर देखना ही है तो क्या देखो, विशेषताओं को देखो। अभी अभी हमने मुरली रिवाइज की थी कि जब दूसरों को देखना है तो उनकी विशेषता को देखो और उनकी कमजोरियों को ना देखो। जो आत्मा अपनी कमजोरी को छोड़ने की कोशिश कर रही है, आप उस कमजोरी को नहीं देखना है, ये कहा था। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा कि कोई अगर कुएं में गिरता है तो आप भी अगर गिर के देखोगे कि वो क्या, कैसे गिरा, क्यों गिरा, तो इसको समझदारी कहेंगे क्या। तो ये एक पॉइंट था। और बाबा ने दृढ़ता पे भी कहा कि जो दृढ़ता है ये बहुत बड़ी गिफ्ट है हमारी संगम युग पर। तो इस पे गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ, पांडव गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ इस पे दृढ़ता से। तो एक मुरली में दृढ़ता पे इतना भी बोला बाबा ने कि दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव आप पर ना पड़े, परंतु आपकी दृढ़ता का प्रभाव दूसरों पर पड़े, ये कहा। और शुरुआत की मुरली में बाबा ने कहा कि अमृत वेले से ही स्वचिंतन शुरू करो, स्वचिंतन आरंभ करो, और इसे दृढ़ संकल्प की रीति से एक नियम बनाकर उसे आरंभ करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन तो समझ लिया लेकिन नियम नहीं बनाया। तो नियम बनाना है कि जिस प्रकार दूसरी बातों का नियम है दिन भर, तो इसी प्रकार स्वचिंतन का भी एक नियम बनाना है, तो इससे अलबेलापन समाप्त होता है। फिर बाबा कहते हैं कि 50% बच्चे क्यों अलबेले हो जाते हैं, दूसरों को देख देख के अलबेले हो जाते हैं कि ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे। जैसे अभी उन्होंने बताया कि बाबा कहते हैं कि अगर एक ने ठोकर खाई तो आपको ठोकर खाकर देखना जरूरी नहीं है, ये समझदारी नहीं है, तो इसलिए दूसरों को देखना बंद करना है। फिर बाबा ने कहा कि कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं कि कुमारियों को 7 बातें छोड़नी है, 7 बातें धारण करनी है। तो 7 बातें जो छोड़नी है उसमें 5 विकार और 6ठा जो है वो आलस है, 7वां है भय है। और 7 बातें धारण कौन सी करनी है, स्व रूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी। तो ये 7 बातें धारण करनी है। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले सभी बच्चे अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं बाबा को कि
कि ये बदले, ये हो जाए, ये तो सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर इसी प्रकार का अलबेलापन जारी रहा तो बहुत सारे बच्चों ने साकार मिलन का जो सौभाग्य है वो तो गंवा दिया, तो ये जो पुरुषार्थ का जो समय मिला है वो भी हम गंवा देंगे अगर इसी प्रकार का अलबेलापन, बहानेबाजी अगर करते रहे, कहानियां सुनाते रहे। तो फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार 3 मिनट का रिकॉर्ड भरते हैं ना तो बहुत अटेंशन दिया जाता है। जैसे मैं स्टूडियो में थी तो मुझे ध्यान है कि अगर हम कुछ भी शूटिंग कर रहे होते थे तो एक भी चूं चा के कुछ आवाज आ जाती थी, सब वेस्ट हो जाता था। इसीलिए सांस भी हम थोड़ा धीरे ही लेते थे कि बस आवाज ज्यादा उसमें चली ना जाए कहीं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि आप तो कितना 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, और बाबा कहते हैं कि अगर ठीक से नहीं किया तो वो रद्दी में चला जाएगा, तो अगर इतना ध्यान देंगे तो जरूर अलबेलापन समाप्त हो जाएगा।
बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह, कई कई बच्चे अपने आप को समझते, परंतु बेफिक्र बादशाह इसका मतलब ये नहीं कि आलस्य और अलबेलापन हो। मतलब ये भाषा होती है ना कि हम बेफिक्र हैं, तो उसमें आलस्य और अलबेलापन आने के चांसेस होते हैं। एक मूल्य में बाबा ने कहा कि जैसे कि कोई चीज़ अगर भरपूर होती है तो वो छलकती नहीं, और जैसे कि खाली नहीं होती ना वो, और जो चीज़ खाली होती है उसमें मार्जिन है हलचल होने की, तो जब हलचल होती है तब माया आती है। तो यानी कि आपने जो अपना लॉक लगाया है वो लूज है, तो बाबा ने कहा कि डबल लॉक लगाओ, और डबल लॉक लगाएंगे तो उसमें फिर विधि बताई बाबा ने कि इसका मतलब है अपने आप को बिजी रखो। तो जैसे कि एक विधि है अलबेलापन से दूर रहने की कि अपने आप को हमेशा बिजी रखना है, तो जब बिजी रखेंगे तो अलबेलापन दूर रहेगा, एक मूली में ऐसे कहा। और बाबा ने कहा कि ये जो कभी कभी शब्द है ना इसको समाप्त करो, और अभी अभी शब्द है ना ये होना चाहिए आपके पास। और एक मिलने में ये भी था कि जैसे कि अलबेलापन की भाषा और तीव्र पुरुषार्थी की भाषा सेम होती है, वो भी बोलता है कि कर लेंगे हो जाएगा, और तीव्र पुरुषार्थी भी यही बोलता है कर लेंगे हो जाएगा। फिर उमंग उत्साह के बारे में बाबा ने कहा कि कई बच्चों ने उमंग उत्साह के आधार पर आलस्य और अलबेलापन को तीव्र गति से जीता है, इसीलिए हमारे जीवन में उमंग उत्साह हो आलस्य और अलबेलापन को जीतने के लिए।
और बाबा ने कहा इस मुरली में कि सुस्ती का मीठा रूप क्या है, आलस्य है। तो जब ज़्यादा समझदार स्वयं को समझने लगते हैं कि मतलब सब आता है, बहुत ज्ञान आ गया, तो भी अलबेलापन आ जाता है। हाँ हाँ सब पता है हमें, आप क्या बता सकते हो हमें?
अगला पॉइंट बताओ।
कम समझदार बाबा,
ये पॉइंट उनको पता, अगला पॉइंट बताओ।
नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। तो इसीलिए हमेशा ही सीखने की बात होनी चाहिए कि नहीं हमें सब कुछ नहीं आता है ऑफ कोर्स। और कहते हैं संसार में कि जितना जो अधिक सीखता जाता है उसको लगता है अरे मुझे तो कितना कम आता है। तो यही बात है कि ज़्यादा समझदार नहीं समझना स्वयं को। और फिर बाबा ने कहा कि कब कब शब्द को अपने डिक्शनरी से समाप्त करना है, और कब की बजाय क्या करना है,
अब।
तो बाबा कहते हैं कि अगर आप कब कब करते रहेंगे तो जो आपकी प्रजा है वो भी कहेगी कि अच्छा तो लग रहा है बट कभी कर लेंगे बाद में, कब कर लेंगे, लेकिन उसको अब से रिप्लेस करना है। और कहा कि जो कब वाले होते हैं ना वो पिछली प्रजा बनती है, तो आगे की प्रजा पहली प्रजा बनाने के लिए अलबेलापन समाप्त करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भक्त भी ऐसे बनते हैं और वो इस प्रकार फॉलो करते हैं आपका। और फिर बाबा ने कहा कि अपने आप को शोकेस में समझो, शोकेस में समझो। जिस प्रकार माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों के आगे बहुत ध्यान रखते हैं किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। और दूसरी बात कहा, जिस प्रकार एक माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसके ऊपर माँ के खान पान का प्रभाव पड़ता है, तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं जो आपके जो भी अलबेलापन या जो भी संस्कार हैं, जो भी बातें हैं, तो आपके भक्तों पर, आपकी प्रजा पर, सभी लोगों पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल ये अगर इस बात का टेंशन रखेंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा।
एक मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे कि आपकी जो दिनचर्या होती है, अगर वो दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है तो जैसे कि फिर भक्ति में भी आपकी पूजा विधि पूर्वक नहीं होगी, और जब दिनचर्या में सब कुछ सेट होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो वो एक पवित्रता की निशानी है। और बाबा ने एक मुरली में कहा कि जब हम अटेंशन देंगे तो संपूर्ण बनेंगे, तो हमेशा एक लक्ष्य रखो कि मुझे सबके सामने सैंपल बनना है। और संगठन में बाबा ने कहा कि दो चीज़ें होती है, फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। जब हम संगठन में होते हैं तो एक दूसरे को देख के अलबेलापन भी आता है ना, कि अगर वो कर रहा है तो हमने किया तो चलता है, और दूसरी तरफ एक दूसरे को देख के उमंग उत्साह भी आता है। तो इसलिए संगठन में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, तो हमको ध्यान रहे कि हमको क्या देखना है। और एक मुरली में बाबा ने कहा कि अलबेलापन का जो एक विशेष शब्द है वो है कि अलबेलापन वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कि सब चलता है, जो भी है सब चलता है, हो जाएगा, चलेगा ना, वो कर रहे तो हम भी करें तो क्या हुआ, ऐसे
ट्रेडमार्क
है, पता नहीं कितने चलाया। और बाबा ने एक
ट्रेडमार्क के बारे में वो बैंजी बताएंगे,
इन्होंने शुरुआत में बताते हैं। बाबा ने कहा एक मुरली में कि बच्चों में जैसे दो प्रकार की बातें हैं, आलस और अलबेलापन आ जाता है, और फिर कहा कि ये महारथियों में भी और घुड़सवारों में भी अंश और वंश के रूप में आलस और अलबेलापन है, प्रेजेंट है। और अंश जो है वो क्या है, अंश और वंश को बाबा ने अलग अलग बताया कि अंश ये है, वंश ये है आलस अलबेलापन का। तो अंश है जो हम कहते हैं मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, तो ये अंश है, और वंश है ट्रेडमार्क बोल कि फिर क्या हुआ, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम अलबेलापन में आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना, वो लॉयर तो बन गए लेकिन लॉफुल नहीं है। फिर कहा कि अगर आप अपने आप को ना, ये पॉइंट में बाबा ने कहा कि चेकर बनना है, अगर इससे मुक्त होना है तो चेकर बनना है। और अगर हम एक दिन अपने आप को चेक करें और 7 दिन अपने आप को चेक ना करें तो कौन से संस्कार डाल रहे हैं अलबेलापन के। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि ट्रेडमार्क बोल का जो मुरली है।
दूसरा, बाबा ने अलर्टनेस पे बात की एक मुरली में कि जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ पे हम अलर्ट होते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे एग्जांपल दिया बिजनेसमैन का कि बिजनेसमैन को बिजनेस में कितनी प्राप्तियाँ होती है तो वो कैसे अलर्ट होता है, तो उसको सुस्ती नहीं होती। तो अलबेलापन को अगर हमको भगाना है तो भी एक अलर्टनेस होनी चाहिए, जहाँ अलर्टनेस है वहाँ आलस्य अलबेलापन नहीं आएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक मुरली में दिया बाबा ने सेना का, कि बाबा ने हमको कंपेयर किया कि देखो सेना जो होती है वो कितनी अलर्ट होती है, तो आप भी कौन हो, आप भी पांडव सेना हो, तो आपको भी सदा अलर्ट रहना है। फिर दूसरा बाबा ने आदत पे बात की कि हम बोलते हैं ना कि हमारी ये आदत है, हमारी ये नेचर है, तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि अटेंशन की आदत डाल दो, बार बार अटेंशन की आदत डाल दो। आत्माएं अपने आदत से मजबूर हो जाती, मनुष्य आत्माएं आदत से मजबूर हो जाती, कहते हैं कि हमको करना ही नहीं था फिर भी हो गया, ना चाहते हुए भी हो गया। तो हमारी अटेंशन वाली अच्छी वाली आदत हो, तो अटेंशन की आदत हो, बाबा ने कहा। एक मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे कि अगर एक मशीन होती है तो अगर मशीन का एक भी स्क्रू अगर ढीला होता है तो मशीन कमजोर हो जाती है। तो हमारे पुरुषार्थ में भी अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार से आता है, और ये जो स्क्रू है पापा ने उसको अलबेलापन से कंपेयर किया, ये जो अलबेलापन आएगा ना तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाएगा, इसीलिए ये एक बात की।
फिर बाबा ने कहा कि अगर आपको जैसे बाबा कहते हैं ना छोटे सुभान अल्लाह और समान अल्लाह, तो अगर समान अल्लाह बनना है तो बाबा कहते दो बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात थी, दूसरी बात मुझे शायद समझ में नहीं आई उसमें, जो थोड़ी बहुत है कि अपने आप को आधार मुहूर्त समझना है, कि अगर स्वयं को आधार मुहूर्त समझेंगे तो हम जानते हैं कि हम आधार मुहूर्त हैं तो दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरी बात है कि अपना हर कर्म जिम्मेवारी से करना है, तो इससे अलबेलापन दूर होता है। फिर दूसरी मुरली में बाबा ने कहा कि जो हमारी मास्टर रचयितापन की जो एक नशा है उसको बढ़ाना है और अपनी रचना के आकर्षण से दूर होते जाना है। तो और फिर बाबा ने चार प्रकार की भूलों की बात की कि कौन सी भूलें हैं, याद है किसी को?
बचपन की भूलें।
हाँ जी, बचपन की भूलें, आलस की भूलें, अलबेलापन की और बेपरवाही की भूलें। इन भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे कि सतयुग में भूले हुए होते हो, इस प्रकार भूल जाओ। फिर अगली मुरली में जैसे इन्होंने कहा कि बाबा कहते हैं कि अगर अगर हम इस बात पर ध्यान रखते हैं, हमेशा उमंग उल्लास में रहते हैं, तो कभी भी आलस अलबेलापन नहीं आ सकता।
फिर बाबा ने कहा कि साधनों को बढ़ाना है, जहाँ पे साधनों को बढ़ाएंगे तो बेहद की वैराग्य वृद्धि होगी। उसमें बाबा ने साधनों पर बहुत विस्तार किया कि जैसे कि होते हुए अगर दूर रहेंगे तो उसको कहेंगे वैराग्य। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा कि माया से घबराओ नहीं, माया की हर चाल को समझ जाओ। जैसे कि व्यर्थ संकल्प है, उसमें नेगेटिव भी आ जाता है, तो ये सारी संकल्पों पर चेकिंग करो और इस पर ध्यान दो। और जब भी कोई फालतू संकल्प चलता है या कुछ ऐसे समय बीत जाता है, तो हम कहते हैं ना कि 5 मिनट चला गया तो क्या हुआ, लेकिन बाबा ने कहा कि 5 मिनट गया ना, तो इस पर भी अटेंशन देना है।
फिर बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार योद्धा जो होते हैं संसार में, उनको सिर्फ 2 बातों की स्मृति रहती है, एक है
जीत,
युद्ध की और विजय की, बस 2 बातें। तो बाबा कहते हैं आप स्वयं को रूहानी योद्धा समझते हो। फिर बाबा कहते हैं कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि योद्धापन की वृत्ति और विजयीपन की स्मृति, विजयी बनने की स्मृति, इन 2 बातों पर ध्यान देना है। और फिर क्या कहा?
कुछ इनको भी बोलने देंगे?
इनको भी बोलने का मौका देना चाहिए वैसे।
नहीं नहीं, हम शांति ठीक
है। नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं, कुछ याद आ रहा है तो सब बोलो।
नहीं नहीं, बोलो।
हमको तो अच्छा लग रहा है सुनना।
अच्छा नहीं, हमें भी सुनना अच्छा लगना चाहिए।
पीछे से कोई बोलेगा, कोई पॉइंट याद है, इतनी क्लासेस हम सुन रहे जब।
हाँ, 2 मिनट कितना?
नवंबर दिसंबर
में सब शुरू किया था, दिसंबर जनवरी पर। हाँ जी, पॉइंट बताओ अभी, बहुत सुन लिया आप लोग ने। हाँ जी बताओ,
कोई भी जो हमने विस्तार किया होगा क्लास में।
इसी प्रकार से अगर समय की कटा नहीं आपको अलापन है, तो जो वर्तमान में प्राप्त होती है उसका
यस, बाबा ने कहा कि अलबेलापन का कारण है ज्ञान की कमी। यस, ज्ञान की कमी, समझ की कमी। बाबा ने कहा कि इसी मुरली में कि आप अपने आप को रूहानी गुलाब समझो, कि रूहानी गुलाब जो होते हैं ना, वो देवताओं पर समर्पित किए जाते हैं। तो कमल फूल और गुलाब के फूल का बाबा ने उसमें उदाहरण दे रखा है कि इस प्रकार अपने आप को रूहानी गुलाब समझो, संगति नहीं रहती तो अलबेलापन आ जाता है। हाँ जी, और हाँ
जी, इसमें बाबा ने ये भी कहा कि सदा लक्ष्य को सामने रखो और दूसरों को ना देखो इतना, और हमेशा ये स्मृति रहे कि हमको संपन्न बन के दूसरों को बनाना है, हम बदलेंगे तो दूसरे बदलेंगे, दूसरों के बदलने के लिए ना रुको।
हाँ जी, उनको और हाँ जी बिल्कुल, फिर भी सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया। ये की भाषा बचपन की भाषा है, बचपन की निशानी है। और बाबा ने कहा कि जिस प्रकार जैसे जब कोई स्थूल रूप में रोता है ना, तो वो अपने नजरें जो राता घूमता है, वो अपने मुख छुपाता घूमता है कि कोई देख ना ले। तो बाबा ने कहा जब अंदर भी उदासी आ जाती है तो बाप से ऑटोमेटिकली ही विमुख हो जाते हैं, तो उसके लिए उमंग उत्साह में रहना है, खुशी में रहना है, बाप के सम्मुख रहना है, ताकि आलस अलबेलापन ना आए।
रोने पर और भी कहा था बाबा ने कि जैसे जब रोना जैसे कि दुख की लहर है ये, और आप सागर के बच्चे हो और तालाब में खड़े हो जाते हो, तो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। दूसरों को देखने की नज़र ज्यादा है
तो आँखों को ठीक कर
हम तो पुराने हैं
yes,
हाँ, सब पता है
हमें। पता है जैसे कई बार इस क्लास में डिस्कशन होती है ना कि पहले तो हमें बहुत पुरुषार्थ करते थे हम पहले तो अब क्या हुआ मतलब
अब तो ज्यादा दिखता नहीं है ज्यादा दिखता नहीं है
किसको दिखाने
अपने को
अपने को दिख नहीं रहा हाँ तो इसलिए और ज्यादा करना पड़ेगा लगता है हाँ जी हाँ जी यस अगर आदत ही है दूसरों को देखना ही मतलब रुका ही नहीं जा रहा है देखे बिना तो कुछ अच्छा सा देखो
हाँ जी में कहा था विशेषताओं
को देखो जैसे स्कूल डेज में जैसे मुझे ध्यान है एक बात की हम पूरे 500 बच्चे ऐसे बैठे हैं स्कूल में और एक प्रोफेसर आए अब स्कूल के बच्चों को तो प्रोफेसर से डर भी लगता है ना थोड़ा प्रोफेसर पता नहीं क्या होता है वो आए और उन्होंने एक सफ़ेद कागज लिया और उसके ऊपर एक काला डॉट लगा दिया और हर बच्चे से पूछा स्टेज से नीचे आके क्या है ये क्या है ये क्या सबने कहा काला काली बिंदी काली 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 तो सब उसने कहा कि किसी को ये सफ़ेद कागज़ दिखाई नहीं दिया सबको ये दिखाई दिया तो यही है कि हमें वो सफ़ेद कागज देखना है
बार बार चेकिंग करनी बार बार अटेंशन
जितनी बार भी पॉसिबल
हाँ बाबा ने तीन मास का एक मुरली में तीन मास का होमवर्क भी दिया कि चेकिंग करेंगे फिर कि है ना ये तीन मास तक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में कब तक रहे ये चेकिंग दी बाबा ने हाँ एक मुरली में बाबा ने कहा कि ये तीन चीजों का आलस्य अलबेलापन और बहानाबाजी का ये खेल जो है उसको समाप्त करो अभी
अलग से अलग लेकिन रहेंगे तो संगम का सर्वश्रेष्ठ जो खजाना वो गवा
देगा बाबा समय
अतिंद्रिय सुख
अतिंद्रिय सुख
ये देखो यहाँ से सवाल शुरू कर दी
फिर एक मुरली में बाबा ने कहा जैसे याद ब्राह्मण जीवन का खुराक है वैसे सेवा भी ब्राह्मण जीवन की खुराक है तो सेवा भी करनी है परंतु अपनी बुद्धि पर एकदम बोझ नहीं लेना है लेकिन एक तरफ इतना भी है कि बोझ नहीं ले रहे तो अलबेला भी नहीं होना है हम सोचते ना कि कर लेंगे इतना बोझ क्यों लेना चाहिए अपने आप पर तो वैसा भी वो बैलेंस होना चाहिए हमने कि हम हमारी सेवा कैसे कर रहे हैं
और फिर 1974 की एक मुरली में बाबा ने कहा कि दो वर्ष के बाद समाप्ति या संपन्न होने वाला है इस प्रकार बाबा ने कहा कि क्या आप सभी अपनी स्थिति को अपनी अवस्था को इतना मजबूत बनाने में लगे हो क्योंकि या फिर ऐसा है कि आप इंतजार कर रहे हो जो इंतजाम करने वाले हैं वो कहीं अलबेले तो नहीं हो गए और जो इंतजार करने वाले हैं वो तेज हो गए मतलब तैयार हैं तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि अलबेलापन जो कहते हैं कि भैया जो होगा देखा जाएगा कोई बात नहीं तो ये है अलबेलेपन की निशानी और इसी प्रकार
क्या कहना लक्ष्य हाँ लक्ष्य लक्ष्य उमंग उत्साह अलर्टनेस बार बार चेकिंग बार बार अटेंशन ये सब की पॉइंट्स है पूरे
तो बार बार में बार बार इन बातों को दूसरे दूसरे तरीके से ताकि कोई तो तरीका हो जो अंदर सेट हो जाए
हाँ जो बच्चे बार बार अटेंशन देंगे उनका टेंशन समाप्त हो जाएगा एक मुरली ने कहा ये भी हो जाएगा
बाबा चिंता नहीं करो
हाँ
और जो गे करते हैं उनको बाबा एक टाइटल देते हैं कौन सा कर लेंगे हो जाएगा
बच्चे
टाइटल देते हैं उनको
गे मेंढक
तो कराटे माता
कुंभकर्ण एक मुरली में कुंभकर्ण के बारे में भी बोला कि कुंभकर्ण ऐसे सोचता है ना कि हो जाएगा तो अंत में फिर नहीं हुआ ना कुछ स्टोरी है तो कुंभकर्ण के बारे में भी एक पॉइंट थी
हाँ कुंभकर्ण वाली पॉइंट छोटा कुंभकर्ण अच्छा जैसे छोटा भीम और इस प्रकार से
हाँ, तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा ये अलबेलापन धोखा देता है। इसलिए रोज मनन शक्ति को बढ़ाओ। इधर विधि बताई, मनन शक्ति को बढ़ाओ। उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? तो बाबा ने कहा कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो कुंभकर्ण पर एक पॉइंट थी।
और बाबा ने कहा कि साकार बाबा का की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी अथक, अथक बनना है। और कहा कि जिस प्रकार स्थूल नींद की निशानी होती है कि उबासी उबासी आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सुस्त होने शुरू हो जाते हैं, तो स्थूल नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। तो फिर बाबा ने कहा कि ये भी एक, जैसे अगर उदासी है तो कहीं ना कहीं अलबेलापन आया है, इसी कारण से उदासी आई है।
ये थकने पर ही बाबा ने एक मुद्दे में कहा कि थकना जो है वो चंद्रवंशियों की निशानी है और अथक रहना है वो सूर्यवंशियों की निशानी है। तो जिधर उमंग उत्साह है वहां थकावट नहीं है, और अभी सीजन ही है उड़ने की, तो उमंग उत्साह में रह के उड़ना है।
गे गे के बहुत गीत हैं चारों तरफ।
हाँ, हर मुद्दे में ये रेपिटेशन है कि गे गे चल जाएगा, हो जाएगा, वो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे।
और फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेला कई बच्चे जैसे दुनिया में होता है ना कि सबसे पहले नंबर लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे अपना कोई फोन मिला रहे हैं बाबा को, फर्स्ट नंबर मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बीच में माया आ जाती है, उनका नंबर कहीं और मिल जाता है। और फिर दुनिया में जैसे होता है ना कि रॉन्ग नंबर अगर मिल गया है तो दोनों एक दूसरे को कहते रहते हैं तुम काटो तुम रखो, हाँ, तो दोनों भी नहीं रखते। तो माया भी ऐसे ना बच्चों को तंग करती है, और उस तंग करने का कारण है माया का कि वो उन बच्चों को तंग करती है जो दिन भर आलस जो दिन भर आलस अलवेलापन में रहते हैं, उनको माया तंग करती है इस प्रकार से अमृत वेले। हाँ,
फिर एक मूल्य में विधि थी जिम्मेदारी। जहाँ जिम्मेदारी होती है वहाँ पर आलस से अलबेलापन नहीं होता है, और जहाँ जिम्मेदारी नहीं होगी, तो जैसे कि हमको जिम्मेदारी की हम विश्व कल्याणकारी है, तो जब ये स्मृति में रहेगा तो आलस से अलबेलापन समाप्त होगा और पुरुषार्थ हमारा जो सेवा है वो तीव्र गति से होगा। तो ये एक बात थी। फिर एक जैसे बच्चे कहते हैं ना कि बाबा एंड में दाल रोटी तो खिलाएगा ही, हो जाएगा, दे देगा, तो उस मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा दाल रोटी खिलाएगा, दो दो सब्जियां नहीं खिलाएगा। जिसका निश्चय पक्का होगा उनको बाबा, ऐसे ही था ना, निश्चय पक्का होगा जो बाप के साथी है, जो सच्चे बच्चे है उनको, जो सच्चे नहीं है, जिनका निश्चय पक्का नहीं है, जो अलबेले है। जो भोग ऑफर करेगा उसको बाबा भूखा नहीं रखेगा। तो
कल गिफ्ट दी थी कौन से, आशीष भाई बता सकते?
आशीष भाई को कुछ गिफ्ट मिली दृढ़ता की गिफ्ट। हाँ, दृढ़ता की गिफ्ट, ये संगम युग की आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट है। फिर एक बहुत अच्छा ये पॉइंट था, मायावी योगी। मायावी योगी और मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा कर देते हैं। माया की समझदारी भी कम नहीं है, माया से योग लगाने वाले भी अचल अडोल योगी है।
बहुत
तो प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान देहत के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना।
हाँ जी, पीछे वाले
साइड वाले
मतलब। हाँ जी,
डेड कॉन्शियस में। हाँ, वो भी
सोल कॉन्शियस बनने।
फिर बाबा ने एक मुरली में कहा कि 90% कमी और कमजोरी आने का कारण है अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। तो ये तीन पर भी चेकिंग।
हाँ जी, अपने नोट्स खोल के जो बैठे हैं वो भी पढ़ के बता सकते हैं, कोई बात नहीं। यस, बेपरवाह नहीं,
बुक से ही बोल रहे ना ये सब, कि अपना अपना भी बोल रहे हैं।
तो जैसे आधार मुक्त होंगे वैसे करेंगे सामने वाले।
एक मुनि में बाबा ने कहा कि भक्त डर के कारण अलबेले नहीं होते, और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करें इसीलिए अलबेला नहीं होते। तो ये भी
चेक कर
परिवर्तन सेरेमनी मनाओ, एक में ऐसे भी बोला है परिवर्तन सेरेमनी बनाओ। वर्तमान में जीना
जैसे एक बार
एक दिन वो हमने विस्तार किया था ना कि प्रेजेंट।
और जैसे एक भाई ने कहा कि एक रिसर्च हुई रिसेंटली कि जो 6 महीने का बच्चा होता है ना वही सिर्फ प्रेजेंट में जीता है 100%, बाकी जो जैसे जैसे कहा कि जब 4 साल का बच्चा होता है तो वो 80% प्रेजेंट में जीता है। जैसे उसने बताया जब हम 18 साल के हो जाते हैं ना तो 3% ही प्रेजेंट में जीते हैं, बाकी इधर उधर ही रहते हैं, इधर या उधर।
ब्राह्मण 100% फ्यूचर में जीते।
ब्राह्मण कहाँ जीते, सत्युग में या फिर
सत्युग में जीते 100%
संगम पर।
सपने
चलो पर लेकिन पता है कि वो सपने तभी पूरे होंगे जब अभी कुछ करेंगे। हाँ जी यस, परिवर्तन का ही तो पुरुषार्थ है। कई बार होता है ना ज्ञान में आते हैं और हमें कहा जाता है कि आप ऐसे क्यों करते हो, जैसे कोई बड़ा हमें बताता है थोड़ा हमें गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमें हम ठीक कर रहे हैं या फिर हम गलत भी कर रहे हैं तो भी हमें क्यों कहा, पर आए तो परिवर्तन होने ही थे ना, तो ये याद रखेंगे तो फिर उस चीज़ को पॉजिटिवली ले सकते हैं।
गले का हार बनती
है कौन सी मुरली में, लो ठीक है
बहुत अच्छा कुछ भी बोल दो चलेगा।
31 बार देख ही
जरूर जरूर देख लेना।
इमरजेंसी ब्रेक लगाना है
लेकिन उसमें मोड़ना भी है, ये भी सारी
हरविन
क्या दिया मैसेज बाबा ने आज। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्लासेस में ना सो जाते हैं यहाँ तो कोई नहीं सो रहा ना। नहीं नोबडी अच्छा और यस अगर आप चाहते हो तो घर जाके सो जाना, यहाँ पे सोने नहीं आए आप।
एक मुरली में उमंग उत्साह के आधार से आलस्य की नींद को जीतने का कार्य भी किया है कई बच्चों ने, ये भी एक था। तो अगर उमंग उत्साह रहेगा तो नींद नहीं आएगी।
और
आरती
नहीं है, हाँ जी बताओ।
एक मुली में बाबा ने ये कहा वेस्ट की बात, ऑनेस्ट व्यक्ति जो होगा ना वो अपने तन को भी वेस्ट नहीं करेगा। जैसे हम हमेशा संकल्पों की बात करते हैं, ये भोजन की बात कर रहे हैं, तो ऑनेस्ट जो होगा वो तन को भी वेस्ट नहीं करेगा।
व्यर्थ में कुछ भी नहीं करेगा
मतलब टाइम वेस्ट नहीं करे, झगड़ा लड़ना वो सब नहीं करे। मतलब हम अपने तन को संगम के ऊपर सफल कैसे कर रहे हैं, जैसे गुलजार दादी ने कहा था ना एक बार कि हमें बहुत खुशी है कि हमारा तन भी संगम युग पर सफल हो गया क्योंकि बाबा हमारे शरीर को यूज कर रहा है।
जैसे दादी जानकी जी कहते हैं बहुत बार कि अगर आपके किसी शरीर के किसी हिस्से में दर्द है हाथ में तो उसी को यूज करो, उसको रेस्ट नहीं दो, मतलब उससे कुछ कार्य करो, कुछ सेवा करो तो वो ठीक हो जाएगा।
एक क्लास में ऐसा बोला था जो मुरली के पॉइंट्स हम लिखते हैं ना तो जो हाथ से किए हुए विकर्म है ना वो भी है ना खत्म हो जाएंगे अगर हम पॉइंट्स लिखते हैं, महावाक्य लिखते हैं। तो इसलिए मुरली के पॉइंट्स लिखो।
तो हाथ के विकर्म,
हाथ से किए हुए विकर्म समाप्त हो जाएंगे।
आंखों से दृष्टि लेते रहे तो आंखों में विकर्म।
श्वास में बाबा की याद
जिनके
अच्छा अच्छा बोलो, महावाक्य बोलो, वरदानी बोल बोलो, वो खाओ जरूर
बाबा की याद में,
बाबा की याद में पानी पियो। और किसी को कुछ याद आ रहा
है? बता तो रहे भैया, बोलो।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। डीके के साथ
पीके
पुरुषार्थी कुमार,
जैसे कल ना यहाँ पे आपने देखेंगे दो छोटी बच्ची आई हुई थी, दो छोटी बच्चियाँ मतलब 5-5 महीने की होंगी, इससे भी कम की, हाँ मतलब जुड़वा है वो, किसी के साथ आई हुई थी, उनकी कोई कहानी है जो सिर्फ मुझे लगा कि इसी की बेटी होंगी, लेकिन वो ना उसने बताया कि वो उसकी माँ ने इनको पैदा करके छोड़ दिया और वो उसका ध्यान रख रही है, तो मुझे लगा इतने छोटे बच्चों को कैसे मधुबन में ला सकते हैं, तो मैंने इसलिए उनसे पूछा कि कैसे आप तंग नहीं हो रहे हो, कहते नहीं ये इनके इसके माँ बाप नहीं है इनके, तो मैं इनको लेके घूम रही हूँ। मैंने कहा क्या नाम है इन दोनों के, कहते शिव कुमारी ब्रह्म कुमारी। कहती मैं इनको बाबा से मिलाने लेकर आई हूँ।
इसके डीके
आपने कहा ना पीके, तो इसलिए मुझे ध्यान आया शिव कुमारी एंड ब्रह्म कुमारी। हाँ जी, और किसी कोने से कुछ
कुछ अनाउंस
आवाज आ रही है?
हो गया हमारा एक मुरली में बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों में व्यर्थ संकल्प जो है वो नेचुरल नेचर बन गई है, तो कोई को सुनने की, कोई को बोलने की, कोई को सोचने की, तो हम इस पे भी ध्यान दें।
हाँ, जैसे दुनिया में होता है ना कि अगर कोई सैड सॉन्ग की कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो दुखी हो के गाएंगे वो, हाँ अगर वो खुशी खुशी वाले सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करेंगे तो बड़े खुश होके गाएंगे, तो बाबा कहते हैं आप भी अगर ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, तो इसमें अगर उल्लास की बजाय आलस में आ गए तो किस प्रकार की रिकॉर्डिंग होगी, तो उस बात का की ओर ध्यान देना है कि आलस ना आए, उल्लास ही रहे सदा, रिकॉर्डिंग चल रही है सदा। जैसे एक बार नीचे शांतिवन में जब पहले साउंड डिपार्टमेंट था, उसके एक बहुत अच्छी कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे कि ऑलवेज रिमेम्बर यू आर अंडर द इटर्नल शूटिंग, कि हर पल शूटिंग चल रही है, कैमरा चल रहा है, जैसे होता है ना बिग बॉस एक सीरियल आता है तो उसमें होता है कि 24 घंटे कैमरा लगा हुआ है, तो जैसे कि ये जो जिस ड्रामा में हम हैं तो हम भी 24 घंटे कैमरा था हमारे ऊपर, लेकिन हमें संगम युग पे आके पता चला अच्छा कैमरा था, अब हम बड़े अलर्ट हो गए। तो ये बात है, अभी तक पता नहीं था कि कैमरा चल रहा है।
हाँ, एक मोदी में ऐसे भी बोला था ना कि 3 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है तो वो कितना ध्यान देते हैं, तो आपकी तो कल कल की रिकॉर्डिंग चल रही है। पॉइंट्स नोट डाउन करो।
और वी जस्ट डिस्कस दिस। और एक मुरली में बाबा ने कहा कि अब बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं क्वेश्चन करने में, कोटेशन देने में, करेक्शन करने में, कोटेशन देते रहते हैं कि इस फलाने डेट की मुरली में बाबा ने ऐसा कहा था ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और क्वेश्चन करते रहते हैं ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, करेक्शन करते रहते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो इसी प्रकार के अगर एक्सक्यूजेज में हम लगे रहे, अपनी बातों को छिपाते रहे या फिर उनको सिद्ध गलत को भी सिद्ध करते रहे तो अलबेलापन बढ़ता जाएगा, तो इस चीज से भी बचना है।
वही बताया ना कि ब्राह्मण बच्चे धर्मराजपुरी से क्रॉस ना हो इसीलिए आलस्य अलबेलापन से दूर रहते।
और एक मुल्य में बाबा ने कहा कि आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आपके त्याग से दूसरों का भाग्य बनना है। ये है कि हमारे त्याग से खुद का भाग्य तो बनना ही है, लेकिन हमारे त्याग से दूसरों का भाग्य बनना है। फिर कहा कि जैसे शुरुआत में साधना अधिक थी, साधन कम थे, तो वो बेहद की वैराग्य वृत्ति अभी भी चाहिए। बेशक कितने ही साधन आ गए तो उसमें अलबेला नहीं होना। ऐसा ना हो कि हमारे त्याग की कमी से औरों का भाग्य बनने से भी वो जैसे वंचित रह जाए। और फिर बाबा ने कहा मंजिल को करीब समझना है। अगर मंजिल हमें करीब महसूस होती है तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, और सदा स्मृति रखनी है समय की और प्राप्ति की, कि समय बस आ गया, नजदीक आई की आई मंजिल, सत्युग आया की आया टाइप। हाँ
यस,
पहुंचे की पहुंचे, तो भी समय और प्राप्ति की स्मृति से भी अलबेलापन हम समाप्त कर सकते हैं।
तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है ये समझना है, हमेशा एवर रेडी होना है। अगर आप गेगे की भाषा यूज करेंगे तो बाबा तो एवर रेडी है और आप एवर रेडी नहीं हो तो फिर साथ कैसे चलेंगे दोनों?
आगे पीछे हो जाएंगे।
ठीक, ओम शांति।
दो मिनट में कुछ आपको कैसे लगा?
ओम शांति। इधर परिवार में आकर और बाबा के घर में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला। और मेरा इस ट्रिप का एक्सपीरियंस रहा कि एक तो पहले 3 दिन मेरे को बिल्कुल थकावट नहीं थी और कोई नींद भी नहीं थी। 2 घंटे भी सोती थी तब भी मेरे को 3 बजे आँख खुल जाती थी। वो पहले 3 दिन तक रहा, उसके बाद बस थोड़ा चला। तो एक दूसरा है कि जैसे बाबा बोलते हैं कि हमको पूरा दिन नशा चढ़ा रहे, तो वो मैंने जो 26 की शाम को मेरे को ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सो गई इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर 27 को भी मेरे को पूरा दिन ही ऐसा रहा कि मेरे को बहुत, जो सुबह की मुरली थी अमृत वेला था, वो पूरा दिन मेरे को अपने आप ही रिवाइज हो रहा था कि समय की पुकार क्या है आज ब्राह्मण के लिए। तो उस दिन मैंने फील किया कि नशा किसको बोलते हैं, कैसे चढ़ना चाहिए। ये इस बार का मैं एक्सपीरियंस लेके जा रही हूँ कि अब मेरे को पता चल गया कि नशा कैसे चढ़ना है। जब ऐसा दिन बीतेगा उस दिन मैं फील करूँ कि नशा है। नहीं मतलब प्रैक्टिकल मेरे को पता चल गया कि कैसे नशा, मतलब या किसको कहते हैं और कैसे हम फील करेंगे। ओम शांति।
शांति।
पंजाबी भी समझ जाएंगे सर। आप पंजाबी बोलो।
Can someone translate?
नहीं, translate आज कोई करेगा नहीं।
Okay.
शनिवार
है, शनिवार नहीं करता कोई। शांति। मैं इस बारी मधुबन से जब आई हूँ, मैनू बहुत प्यार एक्सपीरियंस होया। बाबा की मीटिंग भी बहुत डिफरेंट सी, इट वाजंट लाइक अदर मीटिंग्स। ओके, एंड दैट मैं जाना नहीं चाहती है कि मधुबन तो, पर जाना पैना है। सो ओम शांति सारे नूं, ते मिलांगे फिर।
ओम शांति। ये हमारा मधुबन में सेकंड ट्रिप था ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बाबा मिलन हुआ और कुछ बातें जो अपने साथ लेके जा रहे हैं ना, जिसके ऊपर हम फोकस करना है कि बाबा ने क्या क्या कहा है, तो उस पर ध्यान देना है। और बाकी जो नेक्स्ट टाइम का जब बाबा बुलाएगा तो इधर मधुबन में फिर आएंगे। ओम शांति।
रहना जाए बाकी।
सारी किताब द्वारा पढ़ के आना था जी।